نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير Secrets of Happiness خوشی کے قاعدے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم آج کل ایک سیریز میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بالکل آسان بھی ہیں اور ہمارے اپنے اختیار میں ہیں لیکن ان کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے یا پھر معلوم تو ہے لیکن اس کو اہم نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو بہت بڑی بڑی خوشیوں سے محروم ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو سچی خوشی انسان کو سچا بننے میں اور اپنے کردار کو اعلیٰ کرنے سے ملتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ملتی تو ہم اپنی زندگی کو اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہمیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بیسک فیکٹس کہہ لیجئے یونیورسل ٹروتھس آف ہیپینس کہہ لیجئے ہم نے پیچھے جو چیزیں دیکھی تھیں اس میں سے اگر ہم ایک دو دہرا کر آگے چلے تو آپ کا ذہن ساتھی ہوگا ایک تو ہم نے دنیا کے تمے سے خود کو بچانا ہے بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص کے جس کا پیٹ ہی کبھی نہ بھرے جو مل گیا اس پہ تو کوئی نظر نہیں اور جو نہیں ہے اسی کو ہر وقت روتا اور دھوتا ہی رہے تو سمجھ لیجئے کیسے بندے کو خوشی ملے بھی تو کیسے اور کہاں سے ملے تو انسان کے دل میں سے تما کو نکالنا ہے تاکہ وہ پھر ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا انسان کو اللہ نے تکلیف میں ڈالا خلق الانسان فی کبد کبد کلیجے کو کہتے ہیں لیور کو کہتے ہیں یعنی دنیا میں بچے کے آنے سے لے کر دیکھیے ماں بھی تکلیف میں ہے تو بچہ بھی تکلیف میں ہی ہے پھر اسی طرح سے دنیا سے جاتے ہوئے اکثر روح بھی تکلیف سے ہی جاتی ہے تو جب ایک انسان دنیا میں آیا ہی ایسی چیزوں کے لیے ہے ان چیزوں کو اس نے اپنی زندگی میں کرنا ہی کرنا ہے محسوس تو پھر آپ کیا کہیں اس کو جو کہیں گے جو بھی کریں گے لیکن ادھر سے نہیں تو ادھر سے کہیں نہ کہیں سے تو اس کی زندگی میں پھر مشکل آنی ہی آنی ہے تو ضرورت اس بات کو کہ انسان اپنے آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ رکھے جو نہیں ہے اس سے اجتناب کرتے ہوئے جو ہے اس کو انجوائے کرے گھر میں کتنا کچھ ہوتا ہے لیکن ہم صرف ایک ایسی چیز جو ہے نہیں اس کی کمی کا شکار ہیں یا گلا شکوا ہے اور جو موجود چیزیں اسے فائدہ نہیں اٹھاتے حالانکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ تو ہمارے آپ کے پاس ہوتا ہی ہے تو زندگی میں کامیاب وہی ہے کہ جو اس دنیا کی تما اور ہرس کو چھوڑ دے اور بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لے جو اس کے پاس ہے پھر آپ دیکھیے کہ جو موجود سے راضی ہو جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو باقی چیزوں میں بھی لے آتا ہے پھر اسی طرح سے مستقل لاہو لائف میں مشغولیت غم کی بہت بڑی وجہ ہے ایک انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے اگر وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتا رہے اور وقت کا ضیاع ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو بغیر مقصد کے دنیا میں رکھے خواہش تو بڑی ہوتی ہے کہ ہم چنے جائیں ہم پہ اللہ کا فضل ہو لیکن عموماً لوگ اس چنے جانے کے رستے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں جو اس کے رستے کی کہہ لیجئے قیمت دینی پڑتی ہے وہ دینے سے گھبراتے ہیں یہ چیز ہر ایک اپنے لیے خود سوچ سکتا ہے پھر اسی طرح خوش بختی کیا ہے کہ دوسروں کے نہیں اپنے دلوں میں جھانکیے یہ آپ کے میری زندگی کا ایک کوڈ ورڈ ہونا چاہیے کہ کیا میں اپنے دل سے اندر سے اچھی ہوں بس اس کے بعد پھر باقی چیزوں کو دوسری طرف ڈال دیجئے ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے اور دوسروں کے اندر جھانک جھانک کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کو پرکھنے کی کوششیں کر جاتے ہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہی رکھے گا پھر اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ایک زندگی میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بہت ہی بہترین چیزوں کو جانتا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور چیز اور وہ کیا ہے کہ سعادت اور انس و محبت کا باعث کیا ہے کہ نیکوں کو نیک زوج ملتے ہیں یعنی الطیبات للطیبین ہے اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کاظمین الغیظ کے درجے سے اوپر اٹھ کر غصے کو پینے والے یہ سارے بہت ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ بن جاتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کو اگر بہترین طریقے سے لینے لگ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ آپ خوش رہیں گے اور سب سے بڑی ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ انبیاء کرام ہے ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت ہی بڑا ایک کہہ لیجئے کہ آئینہ ہے अगर हम उस आईने में खुद को भी देखते रहे तो बहुत सारी चीजें हमें अपनी भी अच्छी लग जाती हैं। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमने देखा था कि एक जगह से हटाए गए तो अल्लाह ने उनको दूसरी जगह दी। आइए आज कुछ मज़ीद चीज़ें लेकर आगे चलते हैं और इन चीज़ों से फिर अपने लिए सबक भी लेंगे। और वो क्या है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त से खा लिया। सब जानते हैं ला तकरबा हाज ही शजरती, इस दरख्त के करीब ना आना। अब वो क्या था, वो पौधा था, वो दरख्त था, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक टेस्ट था, एक आजमाइश थी कि पूरी जन्नत हलाल है तो ये चीज़ एक मना है, हराम है, बस छोड़ दो उसको। लेकिन शैतान ने ऐसा झांसा दिया कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म तो भूल गए, फनसिया आदम, भूल गए, नाफरमानी हो गई, तो अल्लाह ने ज़मीन पे उतार दिया, कुल ना भी तुम इन्हा जमिया। अब इसका ज़ाहरी पहलू क्या है कि आदम ने अहसन और ऊला को छोड़ दिया, मकरूह चीज़ इनको मिली, यानी जो मना थी चीज़ वो पकड़ ली तो वो कराहत ही थी ना उसमें। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि खैर अजीम और बहुत बड़े फजल का है कि अल्लाह ने तौबा कबूल की, हिदायत दीन का इंतखाब कर लिया, इनको रसूल बनाया, फिर इन्हीं की पुश से रसूल, नबी और उलमा, शुहदा, औलिया और मुजाहिदीन, आबिद, जाहिद और सखी पैदा किए, यानी एक सिलसिला चल पड़ा ना औलाद का। अल्लाह ताला की अजमत के क्या ठिकाने, इसने एक तरफ फरमाया तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खुशी से खाओ पियो, और एक जगह फरमाया कि फिर हमने इनका इंतखाब किया और इनकी तौबा कबूल की और राह दिखाई। तो पहली हालत रहना और खाना पीना है जिसमें वो जन्नत में थे। ये आम लोगों का हाल है जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, कोई बड़ा हदफ नहीं होता। जबकि दूसरी हालत है इज्तिबा की, सूरत हज में भी अल्लाह ताला आखिर में बिल्कुल फरमाते उम्मते मुस्लिमा को हुवज्तबा को, उसने तुमको चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया, वस्तफा, अल्लाह के नबी को हम कहते हैं ना मोहम्मद मुस्तफ़ा व मुजतबा, वो यही लफ्ज़ हैं, चुन लेना, सफवा से छांट लेना, दूसरों से अलग कर देना, फिर नबूवत और हिदायत अता की, तो जो एक शर्फ मरतबा और बुलंद मुकामी की हालत है। समझ क्या आया, यानी किस्सा आदम से मुझे आपको जो बात समझ आई कि आदम जन्नत में रहते ही रहते ये शजरे ममनुआ का फल ना चखते तो क्या होता, खाना पीना मौज मस्ती, ठीक है। अल्लाह ने भुलवा कर एक नाफरमानी करवाई, उसके बाद तौबा की तौफीक दी, और तौबा के बाद फिर आप चुने गए, अल्लाह ने आपकी नस्ल से खैर की। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि गुनाह इसलिए होता है कि उसकी शर्मिंदगी और उसका गिल्ट इतना महसूस हो कि बंदा फिर ऐसी प्यारी तौबा करे, और ना सिर्फ ये कि अपनी हिदायत को पाले बल्कि दूसरों की हिदायत का ज़रिया भी बन जाए। खुदा तब मुहतदीन की कैफियत आ जाती है एक इंसान की। तो कभी भी किसी बड़े से बड़े गुनाहगार को नफ़रत की निगाह से ना देखिए। आसान तकरहु शैयन बहुवा खैरुल्लकुम, ज़िंदगी का ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा असूल है कि हो सकता है कुछ चीज़ों को तुम तो बुरा कहो लेकिन वो तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर हों। तो जितना ज़्यादा आप और मैं अल्लाह ताला के ऊपर नज़रें लगाएंगे उतनी वो चीज़ हमारे लिए खैर और बेहतरी का ज़रिया बनेगी, और शर में से खैर निकलता है और खैर में से शर निकलता है, ये अल्लाह की सुन्नत है, इस पे नज़र लगाते रहेंगे। और गलती के बाद अल्लाह के आगे इनके सारी फिर तौबा, ये बायस खैर हो गई। तो आपको मुझे भी अपने इर्द गिर्द वालों के साथ इसी तरह की कैफियत रखनी चाहिए। फिर इसी तरह एक और सबक है खुश रहने का आपके मेरे पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाते से, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी एक इज्तिहादी ख़ता हो गई, इन्हें नदामत हुई और रोए, तो ये इनके हक़ में बहुत बड़ी नेमत बन गई क्योंकि उन्होंने अपने रब को कमा हक्का हु जान लिया था, यानी जैसी अल्लाह की शान है ना, जिस तरह अल्लाह ने खुद भी तो कहा ना कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोग नहीं जानते, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को जान लिया था और इसके सामने आजजी और फरोतनी बरती थी। कुरान में बहुत प्यारे लफ्ज़ हैं अनाब के, जैसे मुनीब लफ्ज़ होते हैं ना, यानी गुनाह के बाद एक इंसान अल्लाह की तरफ फिर ऐसा झुका कि उसके दर का ही हो गया, यही अबूदियत का मकसूद है, यानी अल्लाह ताला आपसे मुझसे जो चाहते हैं ना वो अबूदियत है। देखिए इबादत से अबदियत तक ये एक मुस्तकिल टॉपिक है, इंशाल्लाह अलग से आप सुनेंगे किसी मौके पे। हम आबिद तो हैं लेकिन अब्द नहीं बनते, इबादत अपनी जगह धरी रहती है, दिल में वो गुलामी और बंदगी वाली कैफियत कम ही आती है। अल्लाह ताला के सामने इनकी सारी और आजजी अबूदियत के ज़रूरी अरकान में से, यानी आप कह लीजिए कि आप जब तक इनकिसार नहीं होते यानी डाउन टू अर्थ, आजिज़ नहीं होते हम्बल, और अबूदियत यानी आप कहते हैं आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला, तो इन सारी चीज़ों को आपस में एक जगह बड़ी गहरी निस्बत हासिल है। شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو ہم تک پہنچی، یعنی بیچ میں اور بہت سارے راستے تھے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا، اور وہ کیا ہے کہ مومن کا معاملہ کیا خوب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ مومن سے تو معصیت اور گناہ کے جو کام ہو جاتے ہیں کیا وہ بھی اس میں داخل ہوں گے؟ نوٹ کیجئے گا یہ بات. اس کے بعد پھر آپ کبھی کسی گناہ گار سے نفرت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے اندر اگر اپنی کسی نیکی کا کوئی بڑا مان اور بڑا کوئی روب ہے نا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا باذن اللہ. کہا کہ مومن سے جب معصیت اور گناہ ہوتی ہے تو کیا وہ بھی اچھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، بشرطے کہ اس گناہ کے ساتھ ندامت، توبہ اور استغفار ہو جائے. یعنی ظاہراً مومن ایک معصیت میں پھنس گیا، ناپسندیدہ کام ہے، لیکن مانوی طور پر وہ بھی خیر ہی ہو جاتی ہے اگر اس کے بعد پھر شرائط پوری ہو جائے. تو کیا پتہ چلا، ایک جملے سے شاید بات سمجھا پاؤں، کہ تکبر کیا ہوا شخص، یعنی نیکی کر کے متکبر بنا ہوا شخص، اس کی نسبت گناہ کر کے عاجز اور شرمندہ شخص زیادہ بہتر ہے. تو زندگی میں اسی طرح رکھیے اپنے آپ کو بھی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر آپ کے لیے ضرور لائیں گے. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں شر میں سے خیر اور خیر میں سے شر کے کیا معاملات ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو بھی پیش آیا وہ ظاہر اور باطن بہر طور خیر ہی ہوا. یعنی بظاہر جو چیز آج شر لگ رہی ہے نا، کل وہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. مثلاً قوم نے آپ کی تکذیب کی، آپ سے جنگ کی، تو یہ سبب بن گیا جہاد کا. یعنی اگر آپ سے مکہ والے کو جنگ دشمنی کرتے ہی نا، تو پھر یہ جہاد کیسے ہوتا؟ آپ مکہ کے چھوڑتے، مدینہ کے جاتے، پھر مدینہ نام کی خوبصورت بستی کیسے دنیا پہ آباد ہوتی؟ ٹھیک ہے، اللہ کی نصرت آنے کا ایک سبب بن گیا، اور اس کے راستے میں قربانیاں دینے کا. یعنی مکہ والے اگر آپ کی تکذیب نہ کرتے، آپ کو ڈینائی نہ کرتے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بڑی نیکیاں، مثلا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، قربانی دینا، جہاد کرنا، اور اللہ کی طرف سے مدد کا پانا، یہ کیسے ملتا؟ پھر آپ دیکھیے کہ ان میں سے جو مومنین شہید ہوئے وہ جنت کے مستحق ہو گئے. یعنی جنگ نہ ہو تو لوگ شہید کیسے ہوں گے؟ تو شہید نہیں ہوں گے تو جنت کے اعلیٰ درجے کیسے پائیں گے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کفار سے مقابلہ نہ ہوتا، بالفرض ہم چاہتے تو یہ نا کہ نہ ہو، نہ کل ہوتا نہ آج ہو، کیونکہ اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا. اسلام از اے پیس میکر. سچا مومن کبھی بھی ہتھیار اور لڑائی کا خواہ نہیں ہوتا نا. لیکن اگر کفار سے مقابلہ نہ ہوتا تو بڑی کامیابی اور خیر کبیر نہ ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے، بظاہر یہ ایک ناپسندیدہ بات تھی، لیکن باطنن اس میں، یعنی ان سائڈ کہہ لیجئے، اس کے اندر خیر اور فلاح چھپی ہوئی تھی، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی آپ نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی. انصار دامن اسلام میں آئے، اہل ایمان اہل کفر سے ممتاز ہوئے، اور ایمان اور ہجرت اور جہاد کے باعث ہی سچے ایمان والوں اور جھوٹوں میں فرق اور امتیاز ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے کہ احد کی جنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ظاہر ایک شکست ہوئی، یعنی فتح نہ ہوئی لیکن شکست کے راستے بنے، لیکن اللہ نے شکست سے بچا لیا. اب ظاہر یہ ایک ناپسندیدہ امر تھا، آسان تکرہ شہین، لیکن اس میں اتنی خیر ظاہر ہوئی کہ آج آپ چند لفظوں میں اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیے کہ بدر کی فتح سے بعض لوگوں میں خود پسندی سی پیدا ہو گئی تھی، وہ احد کی شکست سے ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا، ذرا سی ہوا بھرنے لگتی ہے انسان میں، میں اتنا اچھا، میں اتنا اہم، اللہ اس کو کوئی چوٹ ڈال دیتا ہے، وہ ختم ہے، اپنے نفس پر اعتماد پیدا ہوا. 70 کے قریب مومنین کو شہادت کا شرف ملا، مثلا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، اسلام کے سفیر مصعب بن عمیر کو، اور جابر کے والد عبداللہ بن عمر کو، جن سے اللہ نے کلام کیا. یعنی دنیا میں ہم کلامی اگر کسی انسان سے اللہ نے کی موت سے پہلے، تو وہ عبداللہ بن عمر تھے، جو کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد تھے. پھر اسی طرح دیکھیے غزوہ احد میں ایک اور بہت ہی کامیابی ملی، کہ منافقین الگ ہو گئے، جو اندر چھپے ہوتے ہیں نا سینوں کے سانپ، اس طرح کے مارکوں میں اور ایسے محاذ جب آتے ہیں نا اسلام کے اوپر، دین کی کوئی پریکٹیکل چیز سامنے آتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ چھٹنے لگتے ہیں. تو وہ کیا الگ ہوئے، اسلام ان سے پاک ہو گیا. دیکھیے جب فتنوں کی ہوا چلتی ہے نا، تو اس میں اگر منافق اسلام سے الگ ہو جاتے ہیں نا، چھوڑ دیتے ہیں، جو اوپر کا ایک لبادہ ہوتا ہے اسلام کا وہ اتارتے ہیں نا، تو دوسری طرف اسلام بھی پھر ایسے لوگوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر ان کی رسوائی ہوئی، اللہ نے ان کے راز کھول دیے، फिर इस पर आप और चीज़ों को देखते जाए, तबूक तक के सफ़र में तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो गया था। तो जो दिल से अल्लाह के नबी के साथ थे ना, वो तो आज भी साथ हैं, चाहे उनकी कब्रें वहाँ हैं, उनके सदका जारिया उधर है, लेकिन जो खोटे थे उनको निकाला। तो सारी बात का फिर खुलासा क्या निकला? आपको क्या राज मिला? आपको खुशी का राज ये मिला कि बज़ाहर ज़िंदगी में आप किसी जगह हिलाए जाते हैं, जुलजिलो जिलजालन शदीदा की कैफियत है, जैसे कश्ती को दरिया में कोई छोड़ दे और चलाने वाला ही कोई ना हो, लेकिन अल्लाह के हर फैसले में खैर होती है। ये बात आपको हर एक की जुबान से दिखेगी। जो बंदा इस बात पे यकीन रखता है उसके लिए ये बात बहुत अच्छी है। तो अपने लिए ये एक बात नोट कीजिए कि जिसको ये बात पता लग गई कि अल्लाह ने एक इंसान के लिए जो पसंद किया है ना, बेहतर वही होता है, इसकी मुसीबतें इसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, दुश्वारियाँ आसान हो जाएंगी, और उसे अल्लाह के लुत्फ़ की तवक्को होती है, वो अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम पर भरोसा करता है, तो लिहाजा इसकी बेजारी और इसकी तंग दिली और रंजो गम सब ख़त्म हो जाएगा, और वो सब अल्लाह ताला के हवाले कर देता है। नाराज़गी, बेजारी, एतराज़ सब छोड़ कर सब्र और शुक्र का रवैया अपनाता है, हत्ता कि अंजाम बेहतर होता है और मसाइब की बदलियाँ छट जाती हैं। चलिए एक और मिसाल से समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल तक दावत के रास्ते में तकलीफ़ें पहुँचाई जाती रहीं, लेकिन आप सब्र और इस्तक़लाल से दावते तौहीद देते रहे, इसमें खुफिया एलानिया रात दिन एक करते रहे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको निजात दी और दुश्मनों को तूफ़ान के ज़रिए से गारत कर दिया। कितना बड़ा सबक है आपके मेरे लिए। फिर आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन आपके ख़िलाफ़ साजिशें करता, चालें चलता और तरह तरह से ईज़ा देता, देश निकाला देता है, अल्लाह की नुसरत आती है, आपको असा अता होता है, जो इनकी सारी चालों को इकारत कर देता है, इससे समंदर में रास्ता मिलता है जिससे मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पार हो जाते हैं, जबकि दुश्मन को हलाक और रुसवा कर दिया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल जंग करते हैं, तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, फिर इनकी माँ का किरदार देखिए, इनकी माँ के बारे में प्रोपेगंडे, इनके किरदार को क्रश करने की कोशिश की जाती है, यानी किरदार कुशी की जाती है, इनके मिशन के बारे में प्रोपेगंडे किए, इनको कत्ल तक करने की कोशिश की, अल्लाह उनको आसमान पर उठा लेता है। अल्लाह अकबर, आपकी नुसरत फरमाता है और दुश्मन नाकाम और नामुराद होते हैं। तो इन बड़े बड़े नामों को लेकर ज़रा अपने ऊपर लीजिए कि अगर आज मेरे आपके साथ कोई तकलीफ़ का मामला हो गया तो क्या बड़ी बात है। ये दुआ करें कि अल्लाह आपकी नज़र में हम महरूम ना हों। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी को मक्का में तो मुशरिकों ने सताया, मदीना में आने के बाद देख लीजिए यहूद नसारा, इन्होंने भी तकलीफ़ें पहुँचाई, तरह तरह से ईज़ा दी गई, तकजीब की, मुकाबले किए, दावत ठुकरा दी आपकी, आपका मजाक उड़ाया, तमस्खुर किया, गालम गलोच तक की, आपको जुनूनी कहा, काहिन कहा, आपकी इस बात को जो अल्लाह ने आपको दी थी उसको शायरी और साहरी का झूठ का इल्ज़ाम दिया, वतन से निकाला, आपके घर का घिराव किया, जंग की, आपके साथियों को कत्ल किया, सजाएं दी गईं, आपकी प्यारी जौजा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम लगा दिया, हमले हुए, बुहरानों का सामना हुआ, भूख प्यास बर्दाश्त की, जख्मी हुए, सामने के दांत टूटे, सर में जख्म आया, मददगार और सरपरस्त चचा अबू तालिब छूट गए, और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो घर की जिंदगी में आपका एक बहुत बड़ा सहारा थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो चली गई, अंदरूनी तौर पर आप तन्हा थे, बाहर से अबू तालिब चले गए, चचा जो बाहर की दुनिया में एक ढाल थे, शाब अबी तालिब में मकसूर हुए, यहाँ तक कि आपने साथियों ने दरख्तों के पत्ते खाए। फिर आप देखिए कि आपकी बेटियाँ आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गईं, सिवाय हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, जो आपके बाद सिर्फ 6 माह तक ज़िंदा रह सकी। फिर आपके सामने आपके बेटों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह परवास कर गई, बेटे का भी नाम इब्राहिम था और एक नबी का नाम भी है। उहद में शिकस्त हुई तो प्यारे चचा हमजा के नाक कान काटे गए, कई बार कत्ल की कोशिशें हुईं, भूख के मारे पेट पर पत्थर बांधे, कई बार तो जौ की रोटी और रद्दी खजूर भी नहीं मिलती थी, शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा, जिनसे साथियों के कलेजे मुंह को आ गए। आप देखिए कि जाबिरों के गरूर और मुतकब्बिरीन की सरकशी हो और अराबियों की बेअदबी हो, यहूद की मकारी और मुनाफिकीन के मकर हों, सब का मुकाबला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लोगों ने बहुत देर से आपकी दावत कबूल की, लेकिन इंजाम आपके हक में अच्छा हुआ, आपको नुसरत मिली, न फतह न लका फतह मुबीना, और सूरत नसर को देख लीजिए, साजा नसरुल्लाही कामयाबी ने आपके कदम चूमे, गलबा इस्लाम आपके ज़रिए से हुआ, दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने आपकी मदद की, तमाम गिरोहों को शिकस्त हुई, तमाम मुसलमानों को जलील और रुसवार ख्वार होना पड़ा। अल्लाह ही गालिब होने वाला है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वल्लाहु गालिबु अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून। तो आप अपनी ज़िंदगी को रिलेट किया करें, खुश रहना है ना तो बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, जिसमें इस वक्त भी हम सीरत पे बात कर रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे कि मैं तो अल्लाह के नबी की पाँव की जूती के बराबर नहीं हूँ। जब आपको इतनी तकलीफ़ें मिली और आप उस पर सब्र शुक्र से जमे रहे, तो मैंने क्या कर लिया, या मेरे ऊपर अभी आ क्या की है मुश्किल, अल्लाह ना करे आए, क्योंकि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हम तो उससे बहुत पीछे से ही पलट जाते हैं, जहाँ जान जानी होती है, हम तो जान जाने से पहले वाले मरहले नहीं बर्दाश्त करते। हमें सुई ना चुभ जाए, और हमें ये ना हो जाए, और हमें वो ना हो जाए, तो हम तो कहाँ जाते, हम तो उससे बहुत पीछे होते। ये तो अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें उस आजमाइश में नहीं डाला, ये तो हमारा एहसान है। सहाबे कराम को आप देखते हैं, वो कैसी कैसी आजमाइशों में डाले गए थे, तभी तो खड़े रहे, अंदर खोट नहीं था, इस्तकामत थी। अल्लाह ताला आजमाता है, परेशानियों में डालता है बंदे को। फिर आप देखिए कि अल्लाह के नबी के फौरन बाद जिक्र करते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक कितनी तकलीफ़ें झेली दीन के रास्ते में, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, असर व रसूख और मनसब का इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह ताला के लिए हर तरह की कुर्बानी देते हैं, हत्ता के सिद्दीक का लकब मिलता है। उमर बिन खत्ताब को देख लीजिए, अबू बकर के बाद उन्हीं का नाम आता है। इबादत के दौरान मेहराब में खून में नहला दिया गया, जब तक कि पूरी ज़िंदगी जिहाद, सखावत, कुर्बानी, जोहद और लोगों के बीच में अदल कायम करते करते गुजारी। तब क्या ये लोग नाकाम थे? आज हमारे अब कामयाबी और नाकामी के मेयार बदल गए, ये भी एक खुश ना होने का राज है। सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को कोल्लू का बेल बनाकर हम स्कूलों और इसके इर्द गिर्द की ज़िंदगी में भेजते हैं कि ये कामयाब हो जाए। हमारा ख्याल होता है कि बच्चे बस पढ़ लिख गए तो कामयाब हो गए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, कामयाबी देखना है उनको, ये नहीं मतलब कि ये सब छोड़ना है, लेकिन सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं। ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से फिर लोग अधूरी कामयाबी पाते हैं, और अगर अल्लाह का बुलावा जल्दी से आ जाए ना, तो फिर परेशान होते हैं कि आगे के लिए तो कुछ तैयार नहीं किया। फिर आप देखिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो, तिलावत कुरान करते हुए ज़िबह कर दिया गया था। अपने असूलों और पैगाम की खातिर वो जान की बाजी लगा देते हैं। कितने लोगों को पता है कि 18 ज़िलहज यह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की शहादत का दिन था। हम और शहादतों का भी जिक्र सुनते और सुनाते हैं, उस्मान की शहादत को भी देखे कोई, 40 दिन के भूखे थे। इन लोगों की ज़िंदगियां देखिए, और आज अपने खुश ना होने की कोई वजह मिलती है आपको? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को देखिए, अबू तालिब के बेटे अली, ज़िंदगी भर ज़बरदस्त इकदामात करते रहे, अल्लाह के नबी के घर के पले हुए बच्चे, जवानी भी अल्लाह के नबी की सोहबत में गुजारी, और इनको सिद्क और फिदाकारी और नुसरत और कुर्बानी के मुकामाते बुलंद हासिल हुए, और इसके बाद आपको मस्जिद में धोखे से शहीद कर दिया गया। तो इस रास्ते में मुश्किलें आनी है, बर्दाश्त कीजिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को देखिए, शहादत मिलती है, किस जुल्म और जोर से उनको मार डाला जाता है। हज़रत हसन को देख लीजिए, मारूफ वाक़िया था, ये बड़ी बड़ी चुनी हुई शख्सियात थी। सईद बिन जुबैर को लीजिए, आलिम थे, फाजिल थे, आबिद थे, जाहिद थे, लेकिन एक शख्स ने इनको कत्ल कर दिया। अब आप में क्या करे, जिसने जो किया वो उसका गुनाह खुद ही कमाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए इब्ने जुबैर यानी अब्दुल्ला बिन जुबैर कह लीजिए, अल्लाह ताला ने हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों हरम में शहादत से सरफराज करवाया। चलिए ये तो सहाबा थे ना। आयमा कराम को देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्ला, इनको हक के सिलसिले में कैद किया जाता है, और इन्हें बेपनाह कोड़े लगाए जाते हैं, तब कहीं जाकर वो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम बनते हैं। यानी लोग आज ऐसे ही इन लोगों के साथ अपनी नस्बतें नहीं जोड़ते, इनको इनाम मिले हुए अल्लाह के रस्ते की मुश्किलात सहने के। फिर इसी तरह वासिक बिल्ला इमाम अहमद बिन नसर अल खुज़ाई को कत्ल कर डालता है, जो सुन्नत के दाई थे, यानी वो लोग जो सारी ज़िंदगी सुन्नत सुन्नत कहते गए और लोगों को दावत देते रहे, लोगों ने बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया। और शेखुल इस्लाम जिनको इब्ने तैमिया के नाम से लोग जानते हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है आज की इल्मी दुनिया की, जेल में डाले गए, अपने घर वालों से, किताबों से, साथियों से इनको अलग कर दिया, लेकिन आज तक दुनिया में अल्लाह ने इनके नाम को बुलंद किया हुआ। امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خلیفہ ابو جعفر المنصور کوڑے لگواتا ہے اور آج خود کو امام ابو حنیفہ سے جوڑنے والے لوگ جو حنفی کہتے ہیں خود کو کتنی لاکھوں کی تعداد میں، تو کیا اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ان قربانیوں کو ضائع کیا؟ نہیں۔ اسی طرح عالم ربانی سعید بن المسیب کو گورنر مدینہ نے کوڑے لگوائے، امام دار الحجرت مالک بن انس کو بھی والی مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ تاریخ پڑھا کریں، ہم یہ جو ہر وقت اپنی نبضیں ٹٹولتے رہتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ امام عبداللہ بن عون تھے، بہت بڑے عالم اور محدث، ان کو بلال بن ابی بردہ نے مارا، اور جن کو تکلیف دی گئی مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، قتل کیا گیا، معزول کیا گیا۔ اگر ان سب کا شمار کرنے لگ جائیں تو بات اتنی بڑھ جائے کہ ختم ہی نہ ہو، پھر آپ کے میرے پاس کیا گنجائش ہے یہ کہنے کی کہ میری زندگی میں دکھ بڑھے، غم بڑھے، پریشانیاں بڑھی، میں کیا بتاؤں، میں کس کو بتاؤں، میں کیسے بتاؤں؟ کیا آپ میں یہ راگ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ چند چیزیں نصب کر کے رکھ لیجئے۔ ان سب کو اگر عزت ملی اتنی مشکلوں سے گزرنے کے بعد، تو اگر مجھے کوئی چھوٹی بڑی تکلیف آ گئی تو میں واہ ویلا نہیں کروں گی، رونا نہیں ڈالوں گی۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سیکرٹس آف ہیپینس کا ٹاپک تو پورا ہوا، یعنی خوشی کے قاعدے۔ اب اگلے چند منٹس میں ہم کچھ اشعار، جو اصل میں عربی اشعار ہیں لیکن اس کا اردو ترجمہ آپ کو سناتی ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید ایک شعر ہی آپ کی میری زندگی بدل دے۔ تو منتخب اشعار کا ترجمہ، جو گزرا سو گزرا، جس کی امید ہے وہ غیب میں ہے، تم تو بس اسی وقت کے مالک ہو جس میں تم ہو۔ مفہوم واضح ہے، یعنی آج میں جئیں، کل گزر گیا چھوڑ دیجئے، کل جو آنا ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آج کی قدر کیجئے۔ یہ بھی خوش رہنے کے لیے ایک اچھا فارمولہ ہے۔ اللہ کی مہربانیوں کے ایام اگرچہ کتنی ہی مدت ہو جائے، ایک لمحے کے مانند ہے۔ جی، اور اللہ نہ کرے کوئی ازمائش آ جائے تو ہم کہتے ہیں وقت ہی رک گیا۔ کیا تم کشادگی کے آنے سے مایوس ہو گئے؟ پھر اللہ اور تقدیر پر ایمان کہاں گیا؟ ہر اس بندے کو یہ شعر یاد رکھنا چاہیے جو واقعی اللہ سے مایوس پھرتا ہے۔ جس چیز سے تم خوش ہو رہے ہو اس کی خوشی دائم نہیں رہ سکتی، غم سے تمہاری کھوئی چیز واپس نہ ہوگی۔ جی، دنیاوی چیزوں میں سب سے بہتر گھوڑے کی زین ہے جس پہ بیٹھا جاتا ہے اوپر، اور زمانے میں سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے، یعنی یہ دوست تو آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑتا۔ مالدار جو اپنا دروازہ بند کر کے رکھتا ہے اور لوگ اسے بخیل سمجھتے ہیں، اس کے پاس مت جاؤ اگر ایک روٹی بھی تمہارے پاس ہے، یعنی بخیل سے جا کر کوئی تقاضا نہ کیجیے۔ اس کے پاس مال بہت ہے پر اس کا دل بند ہے، نہیں دے گا آپ کو۔ میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے غلام بنا لیا، اگر میں قناعت اختیار کرتا تو آزاد ہوتا۔ تو کیا پتہ چلا، بدترین قیدی یا بدترین اسیر خواہشوں کا قیدی ہے۔ خواہشات بندے کو کسی جگہ کا نہیں رکھتی، اس لیے کبھی بھی اپنی خواہشوں کو سرکش نہ ہونے دیں کہ آپ کے اوپر ہی سوار ہو جائے اور آپ کسی خواہش کے پورا نہ ہونے سے ہی ناخوش ہو جائیں۔ اے زمانے، تیری اور آفتیں بھی ہوں جن سے شرفا کو ستایا جاتا ہے، تو انہیں بھی لیا، یعنی جتنے آئے نا غم، مشکلیں، آفتیں، آزمائشیں، فتنے، اور بھی آ جائیں۔ مراد یہ کہ ہم اللہ کی رحمت سے کھڑے ہیں ہر فتنے اور آزمائش کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے۔ شاید کہ زمانہ دوریوں کی کسک کے بعد ہمیں اپنے پیاروں سے ملا دے، یعنی اگر آج آپ اپنوں سے دور ہیں، کسک کے دل میں کھوک اٹھتی ہے، کوئی بات نہیں، دیکھیے گا آنے والے دور میں ہم ملیں گے انشاءاللہ۔ اس سے کہو جو گردش زمانہ سے ہمیں آر دلاتا ہے کہ زمانے سے وہی تو لڑتا ہے جو کچھ اہمیت رکھتا ہے، یعنی جن میں کچھ ہوتا ہے وہی لڑتے ہیں، باقی تو پہلے کیپ اپ کر دیتے ہیں۔ جو چیز مجھے نہیں ملتی میں لالچ سے گردن اٹھا کر انہیں نہیں دیکھتا، جو چیز فوت ہو جائے اس پر رات بھر افسوس نہیں کرتا۔ کتنی پیاری بات ہے، لالچ نہیں کرنا، چلی گئی چیز تو افسوس نہیں کرنا، بس تقدیر کو اپنا کام کرنے دو اور بالکل خالی ذہن ہو کر سو جاؤ۔ یہ جو ہماری راتوں کی نیند اڑی ہوتی ہے نا، وسوسے اور غم کیوں ہوا، اصل میں یہ تقدیر کا رونا روتے ہیں، اور خوشی اس دن ملے گی جس دن تقدیر پہ راضی ہوں گے۔ رضیت باللہ ربا۔ पलक झपकने के जितनी देर में ही अल्लाह हालात को तब्दील कर देता है। सच बताइए, कितनी गर्मी होती है और एक बदली आती है और हवा चलती है और रिमझिम बारिश शुरू होती है। बरसात में तो ये मंज़र आपने बीसियों बार देखा होगा, तो आपकी भी ज़िंदगी के दुख दूर हो जाएंगे। एक सेकंड लगेगा, बस अल्लाह ने खुद कहना। जब आदमी मायूस होने लगता है तभी अचानक कुशादगी पैदा हो जाती है। देखिए, कभी आप किसी का घर ढूंढ रहे होते हैं ना, इधर देख उधर जा, इस गली उस, नहीं मिलता। आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं मिलेगा, गलत जगह आ गई, नंबर ही नहीं मिल रहा, है ही नहीं, फ़ोन नहीं काम कर रहा, ये नहीं है, GPS नहीं काम कर, वापस चलो। आप हल्का सा मोड़ मुड़ते हैं ना तो एकदम आपकी नज़र पड़ती, ठहरो, बस वो मोड़ मुड़ते ही पहला घर था जिस मोड़ के मुड़ने का इंतज़ार था, और चीज़ सामने होती। आप अपनी मौजूद चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, वो नहीं मिलती, फिर मिल जाती है। बीमारी के बाद सेहत मिलती है, और मामलात में वही मामले अच्छे होते हैं जिनका अंजाम अच्छा हो। जी, एंड वेल इज़ गुड वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि नागवार चीज़ें तुम्हें घेर लेती हैं, अल्लाह इनमें खैर रख देता है, हालांकि तुम्हें नागवार लगती हैं। ये तो फितरत का असूल बन गया। जो महज सोचता रह जाएगा वो सोच सोच कर मर जाएगा, और जो इकदाम कर डालेगा इसी को कामयाबी मिलेगी। वो कहते हैं ना, सोची पिया ते बंदा गया। सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। दोस्त अल्लाह को बनाओ और तमाम लोगों को किनारे कर दो। हम लोगों को दोस्त बनाते हैं और अल्लाह को किनारे पे डाल देते हैं, नौज़ बिल्ला। मैं तो तुम्हारी दादो दहश से मायूस हो गया हूँ, यानी मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही कि तुम मेरी तारीफ़ करोगे। मायूसी की मानिंद शरीफ आदमी को दूर कर देने वाली चीज़ कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मायूस नहीं होना ये मुराद है। यूँ तो आसमान में बेशुमार सितारे हैं, लेकिन ग्रहण सिर्फ सूरज चांद को ही लगता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा नहीं लोग छेड़ते, बड़ी चीज़ जो ज़्यादा खूबियों वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं पे आजमाइशें आती हैं। सूखी रोटी जो आफियत से खा लो, ठंडे साफ पानी का प्याला, छोटा सा एक कमरा जिसमें तुम आराम से रह लो, और कुरान पाक का एक नुस्खा जिसे टेक लगा कर पढ़ सको, ये बड़े बड़े महल्लों में रहने से बेहतर है कि जिनके बाद दोजख में जाना पड़े। अल्लाह कभी इस बुरे अंजाम का हमें शिकार ना करें। साबिर आदमी की ज़रूरत लाजिमन पूरी होगी। जो बराबर दरवाज़ा खटखटाएगा इसे अंदर आने की इजाज़त मिल ही जाएगी। स्टे ट्यून्ड, लाइन में लगे रहिए। अगर आपको वाकई कोई जिम्मेदारी चाहिए, खड़े रहिए, अल्लाह आपको ज़रूर बुलाएगा। दिल साफ रखिए, सोच की तथखीर कीजिए, जो काम मिले हुए उनको अच्छी तरह कीजिए, अल्लाह आपकी ख्वाहिश के काम भी आपको ज़रूर दिलाएगा। लोग आपस में तदबीरें करते, मंसूबे बनाते हैं, जबकि अल्लाह ताला हर रोज़ एक नई हालत पैदा करता रहता है। कुल यौमिन हुवा फी शान। अच्छा, हमारे प्लान ज़्यादा, मीटिंग्स हमारी ज़्यादा, बातें ज़्यादा, इम्प्लीमेंटेशन कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, यहाँ तक कि सब्र का फल पा लेता हूँ, और उम्मीद भर आती है तो क्या मतलब, आप भी पुरउम्मीद रहिए। जब अल्लाह किसी अच्छी बात को फैलाना चाहता है तो इसके लिए हासिदों की ज़ुबानें दराज कर देता है। लिख लीजिए इसको। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कैंपेन फिरौन से करवा दी। कहाँ मूसा इतने लोगों को जमा करके अल्लाह का पैगाम देते और हक और बातिल का फ़र्क दिखाते, फिरौन ने सब को जमा करवा कर खुद ही दिखा दिया कि मूसा सच्चे हैं और जादूगर झूठे थे। तो कभी लोग आपको बुरा भला कहे ना, तो चेक किया करें कि आपके पास बात अच्छी है, ठीक है, फिर खुश हो, मेरा काम ये करेंगे। कहते ना, बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। अगर आग ना भड़कती और अड़ोस पड़ोस में ना फैला करती तो ऊद की खुशबू कैसे जानी जाती। जी, यानी आग भड़कती है ना, तभी तो ऊद की आग जलाएं, लकड़ी जलाएं तो खुशबू भी फैलती है। अगर आग में भड़कने की खूबी ना होती तो खुशबू भी ना आती दूसरों को। मैं अगरचे अपने हासिदों को मलामत करता हूँ, लेकिन मेरा तो वजूद ही इनके लिए सज़ा है, यानी वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कल जिस तकलीफ़ के अंदर मैं था, करीब है कि जल्द ही इससे खुलासी मिल जाए। मोमिन ऑलवेज होपफुल होता है। जब दिलों पर मायूसी छा जाती है और कुशादा सीने भी तंग हो जाते हैं, और मुसीबतें और आफतें अपनी जगह जमकर रह जाती हैं, ना नुकसानदेह चीज़ों के दूर होने से नफ़े की उम्मीद होती है और नकलमंद की तदबीर कारामत होती है, तो ऐसी मायूसी के आलम में रहमान और रहीम की मदद आती है। हादसा जितने बड़े भी हों, कुशादगी इनसे मुत्तसिल ही होती है, यानी मिली होती है। हर हादसे के बाद कुशादगी, ये मुराद है। बहुत से मामलात से तुम डरते हो, हालांकि इनमें तुम्हारी मर्जी की बात सामने आ जाती है। इससे खुशगवार चीज़ छुप जाती है और नागवार बात जाहिर हो जाती है। सुभान अल्लाह, कितनी ही नेमतें नागवारियों में छुपी रहती हैं, इसलिए इन पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी, ऐ हम नशीन, आरजुएं झूठी हैं और मायूसी के साथ अक्सर कामयाबी के असबाब भी हैं। कभी अल्लाह किसी को बड़ी बड़ी मुसीबतों से आजमाता है और कभी बास लोगों को नेमतों से। अपने ऊपर नज़र रखिए, क्या मेरी नेमतें मेरे लिए आजमाइश तो नहीं बनी हुई? हादसात ते दहर, यानी ज़माने के हादसे बुरे तो लगते हैं, लेकिन इनके ज़रिए ही तो नेमतों की कदरों कीमत मालूम होती है। हर आदमी के साथ तकदीर लगी हुई है, ज़माना और उसकी गर्दिश में ताज्जुब की क्या बात है। यानी ये जो गर्दिश दौरा है ना, ये आपकी मेरी तकदीर का पहिया है, कभी ये तो कभी वो। बस औकात ज़माने की सख्तियाँ तुम्हारे लिए बेहतर होती हैं, और ज़माने में मुस्तकिल तो कोई चीज़ रहती नहीं। क्या तुम समझते हो कि आदमी की बेचारगी हमेशा रहेगी? अगर कोई चीज़ दायमी होती तो लोग इसे अजायब में शुमार न करते। जी, शरबतमंदों पर रश्क न करो कि जितना ज़माना इन्हें देता है वैसे ही छीन भी लेता है। यानी जब दौलत आती है ना तो चली भी जाती है। अरे हासिद नादान, गर्दिशे ज़माना का ताना देते हो, ये बताओ कि तुम ठीक ठाक और शरबतमंद रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? यानी कुछ भी यहाँ मुस्तकिल नहीं। क्या नहीं देखा कि जब रात के अंधियारे अरूज को पहुँचे तो सुबह का नूर नमूदार होने लगा? यानी जब इज्जत मिली तो रात ख़त्म हो गई। जी, कुछ लोगों को रात को दिखता नहीं है, कुछ को रात को ही सिर्फ दिखता है। तो ज़िंदगी में मुस्तकिल तब्दीलियाँ हो रही हैं। जल्द ही अल्लाह फराखी पैदा करेगा, क्योंकि हर रोज़ मखलूक में इसकी नई शान का ज़हूर होता है। तो अगर आज तंगी है, तंग दस्ती है, तो बर्दाश्त कीजिए, कुछ दिन के बाद आप ये सारी चीज़ें भूल चुके होंगे। किसी भी चीज़ को वजह बनाकर खुद को बेअमल ना कीजिए, दुखी ना हो, और इसी तरह अल्लाह पर मुस्तकिल नज़रें लगाइए। तब्दीली लाजिम है। दर्द के मारे को अल्लाह जल्द ही शिफा देगा कि मखलूक में इसकी नई शान का ज़हूर होता है। भेड़िए ने आवाज़ निकाली, मुझे इसकी आवाज़ मानूस लगी, इंसान ने पुकारा तो खौफ के मारे मैं उड़ने के करीब हो गया। यानी बाज़ दफ़ा इंसान दूसरों को भेड़ियों से ज़्यादा नुकसान देते हैं। हमारी दौलत यानी सरवत जितनी बढ़ती है इतनी ही फिक्रें बढ़ती हैं। ज़्यादा माल सितम बालाए सितम है, यानी एक सितम पर दूसरा सितम। कनात की दौलत पर ना तो खौफ होता है, ना पहरेदारों और हुकूमतों की ज़रूरत पड़ती है। जी, पैसों को ले लेकर लोग रखे हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, बैंकों में डालते हैं, कोडवर्ड याद रखते हैं, पासवर्ड्स हैं, चाबियां गुम गई, लॉक कर ये। आपके पास कनात की दौलत है, उसको खुला रखे, कोई नहीं चुराता। नफ्स को आदमी जैसा चाहे आदी बना दे, खिलाओगे तो और मांगेगा और ना सब्र करेगा। जैसे बच्चे की हर बात मानी है तो ज़िद्दी हो जाएगा। भूख तो सूखी रोटी भी दूर कर देती है, फिर ज़्यादा वसवसे और हसरत क्यों? यानी अगर सिर्फ पेट ही भरना है तो फिर इतनी क्या फिक्रें लगा ले इंसान अपने आप को। दुनिया ऐसी जगह है कि एक दिन हंसोगे तो दूसरे दिन रोओगे। क्या ही ख़राब जगह है। करीब है कि कुशादगी आए, करीब है कि इसी लफ्ज़ करीब से हम दिल को बहलाते रहते हैं। यानी बस यही कह कह के अच्छा करीब है करीब है, अपने आप को बहलाते रहिए। ऐ मुसीबत तो ख़त्म होने वाली है, सुबह को इज़्ने नमू मिल गया, या सुबह को इज़्ने नमूद मिल गया है। यानी कि रात चली जाएगी, सुबह होगी तो मुराद है कि मुसीबत भी चली जाएगी और फराखी आ जाएगी। लोग खैर को यूँ नहीं समझते कि इसके बाद शर नहीं होगा, न शर को मुस्तकिल और लाजमी ख्याल करते हैं। ज़माना क्या है? मुसीबत, और इसका अख्ताम तंगी और कुशादगी। मैंने दिल से कहा, अगर तुझे रंजो गम का एहसास सता रहा है तो खुश हो जाओ कि ज़्यादातर गम बेकार ही होते हैं। नफ्स को लालच दोगे तो लालच में आएगा, अगर कलील का आदी बनाओगे तो कनात करेगा। मुरादा के नफ्स को थोड़े पे राजी रखिए। हर हालत बदलती है, अक्सर ऐसा होता है कि नाखुशगवार से खुशगवार अमर जाहिर होता है। सलमा मुझे ज़माने की गर्दिशों से डराती है। बहुत से लोग वहमी चीज़ों से डरते हैं, यानी जो होना भी नहीं, सिर्फ वहम कर कर के हौलते रहते हैं। कोई बात होने से पहले मैं अंदेशे में नहीं पड़ता, और हो जाती है तो इससे घबराता भी नहीं। ये हैं ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून। ज़्यादा फ़िक्रें न करो, कोई चीज़ बराबर नहीं रहती, तुम्हारे तफक्कुरात भी हमेशा नहीं रहेंगे। जो ज़िंदा रहेगा अपनी बहुत सी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, जहाँ तंगी पेश आती है वहाँ कुशादगी की राहें भी होती हैं। अल्लाह अकबर। बस औकात इंसान किसी चीज़ से परेशान होता है जिसमें कुशादगी की राह होती है, जैसे उकाल खोल दी जाती है। उकाल उस रस्सी को कहते हैं जिसे ऊँट को बांधते हैं। ये जो अक़ल है ना आपकी मेरी, ये भी हमें बहुत सारी चीज़ों के करने से रोक लेती है। तो मतलब ये कि हर बात पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहिए। नेमत में रहो, मज़े उड़ाओ, कि मामलात की जैसी इब्तदा होती है इंतहा भी होती है। हादसात कितने ही बड़े हों, इनसे खुलासी का रास्ता भी इन्हीं में छुपा होता है। जो रब तुम्हारे कल काम आया था वो आइंदा जो होगा इसमें भी काम आएगा। नफ्स को मुख्तलिफ़ उम्मीदों से मैं बहलाया करता हूँ, अगर उम्मीद ना होती तो ज़िंदगी कितनी दुश्वार हो जाती। आर्ज़ में अगर बर आई तो बहुत अच्छी हैं, वरना हमने आर्ज़ू में बहुत ज़माना गुजारा है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनकी इब्तदा बुरी होती है और आखिर खुश अंजाम। तो अच्छी कौन सी चीज़ है जिसका अंजाम अच्छा हो? कोई फ़िक्र ऐसी नहीं जिसका कुफल ना खुल सके, कोई हाल ऐसा नहीं जिसमें तब्दीली ना होती हो। मैं दिल को झूठों ही तसल्ली दे लिया करता हूँ, इससे सच्ची बात की जाए तो उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। माल जमा करके रखने में कोई सआदत नहीं, खुशबख्त तो हकीकत में तकवा वाला है। तब देखिए कि बाज़ दफ़ा एक शेर एक पूरा पैगाम होता है। ये दुआ कीजिए कि हमने इस तवील सीरीज़ में जो छोटी छोटी चीज़ें की हैं, अल्लाह ताला उसकी वजह से हमें गम हुज़न सैडनेस से महफूज रखे। तो आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अकेला है, हय्युन क़य्यूम है, इज़्ज़त और जलाल वाला, हम तेरी चौकट पे खड़े होकर तेरे दर पे गड़गड़ा कर तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू हमें माफ़ कर दे, हमें शिफाएँ दे दे, हमें किफ़ायत कर दे। तो राजीक है तो रिस्के फराख और हलाल अता कर, मारने और ज़िंदा रखने पे तो कादिर है। तो अल्लाह तो हमें दुनिया और आखरत में हसना दे और जहन्नुम की आग से बचा और हमसे दरगुजर का मामला फरमा, आफियत दे और दुनिया और आखरत में मुआफ़ी अता फरमा। और हम तुझसे हर उस चीज़ का सवाल करते हैं जो तेरे नबी ने किया और हर उस चीज़ से तेरी पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह ली। अल्लाह के नबी की बड़ी ही जामे दुआ है जिसमें सारी मसनून दुआएं एक दुआ में आती हैं। अल्लाह हमें ऐसी जामे दुआएं मांगने वाला बना दे और हम गम फिक्र आजी और सुस्ती और बुजदिली कमज़ोरी से अल्लाह की पनाह में आते हैं, कर्ज़ के गलबे से और लोगों के कहर से अल्लाह की पनाह में आते हैं। अल्लाह ताला सब साथी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, जिन्होंने करवाया, जिन्होंने इसको सुना सुनवाया और जब इसको इंशाल्लाह क़यामत तक सुनते सुनाते और आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे, अल्लाह ताला उनको भी गमों से आज़ाद करके बस एक गम लगा दे और वो ये है कि हमारी आखिरत कैसी होगी। और अल्लाह ताला आपसे मुझसे खैर के काम ले और दुआ भी बहुत कीजिए कि अल्लाह हमें मरते दम तक हिदायत पर रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।